अगली कौम कौम मदियन हजरत शुएब की कौम, बिजनेस वाली कौम थी, पैसा माल इनका मामला था। आइए इनकी कहानी पढ़ते हैं। और मदियन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और नापतोल में कमी ना किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। इसको हाईलाइट करें। अच्छा लीडर, चाहे वो अपने वक्त का नबी है या कोई दाई दीन है, उसका काम क्या है कि लोगों को वक्त से पहले वॉर्न कर दे कि जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, आज तो तुम खुश हो लेकिन कल इसका नतीजा सजा है। देखिए, मोमिन की फरासत बहुत होती है। हदीस में तो इत्तक फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि ये अल्लाह की बुरहान से देख लेता है। जिस तरह पहले बड़े लोग होते थे ना, वक्त आने से पहले ही कह देते थे अब ये होगा, तो हिकमत है ना, जीनियस होता है इंसान। इसी तरह से अल्लाह के मिजाज को समझते हुए वक्त से पहले प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, और करना ये अच्छी बात है। बात लोग इसे ऑफेंड होते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो हकायक दिखाते हैं, ऑब्जर्वेशन से चीजें दिखाती हैं। हजरत शुएब ने बजाय इसके कि ये होता उन पे अजाब आ जाए फिर रोकते, वक्त से पहले वॉर्न कर दिया कि ठीक हो जाओ वरना अल्लाह की बड़ी मार पड़ने वाली है तुमको। मुझे डर है कि तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा, और बिरादराने कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नाप और तोलो, और लोगों को इनकी चीजों में घाटा न दिया करो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। इसको हाईलाइट कर लें। या जुम्मते मुस्लिमा के नाम भी मैसेज है, बकीयतुल्लाह की खैर। देखिए, तिजारत हलाल है, नफा लेना हलाल है, जायज कमाई में बड़ी बरकत है। ये आयत बताती है कि थोड़ी इनकम सही, थोड़ा प्रॉफिट सही, लेकिन हलाल है, उसमें तुम्हारे लिए बरकत है। अगर तुम मोमिन हो तुम उसी में खुश होगे। बहरहाल, मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरानी कार नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया, अब देखिए तानों पे आ गए, जहां आप सोसाइटी के इस तरह के मामलात को हिट करेंगे लोग अग्रेसिव होंगे। आप लोगों को कहिए नमाज पढ़ो, वो कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी बात आपने की, नमाज पढ़नी चाहिए। आप कहते हैं लोगों रोजे रखो, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है शाबाश। आप कहते हैं देखो सूरत रोज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, लोग कभी भी माइंड नहीं करते, हमेशा खुश होंगे। डूस पे उनको हुक्म दे, दे आर हैप्पी। जहां डोंट्स पे बात आएगी, डोंट डू दिस, डोंट टेक दिस, डोंट डू दिस, वहां लोग परेशान होंगे। 10 नेकियां करना आसान है, एक गुना छोड़ने की निस्बत। आज भी आप देखिए वही हुक्म दीन के लोगों को चुभते हैं जिससे लाइफस्टाइल में मसला आता है। तो कौम मदियन ने हजरत शुएब को ताना दिया क्या? आइए देखिए, शायद कभी आपको भी मिला होगा, नहीं मिला तो मिलेगा। जब लोगों पे आप उंगली उठाएंगे, लोग आपकी नमाज और आपके दीन को पॉइंट आउट करेंगे। कैसे? कालू या शुएब सलातु कता मुरुकन नत्र कमा याबुदु आबा उना। उन्होंने कहा, शुएब क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको हमारे माल को अपनी मर्जी से खर्च करने का कोई इख्तियार ही नहीं। ये भी देखिए आज के लोगों का मसला, कहते हैं जी हमारी मेहनत है, हम कमाते हैं, आपको क्या लगे? ये मौलवियों को क्या लगे? हम मेहनत से कमा रहे हैं तो मौलवियों को तो बाकी कुछ नहीं लगना चाहिए, लेकिन माल देने वाले ने कुछ रूल्स दे दिए तो लिहाजा कहते थे ये आप क्यों इंटरफेयर करते हैं हमारे मनी मैटर्स में, आप जाके मस्जिद में नमाज पढ़ाएं बस, आपको क्या पता हमारे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पता हमारी क्या इश्यूज हैं और हमारी क्या पॉलिसीज हैं। इन नकल अंतल हलीम रशीद, हाँ बस एक आप ही तो आली जरफ और रास बाज इंसान रह गए। तानों पे ताने, इनको क्या पता। आज भी चंद पढ़े लिखे और दुनिया में अल्लाह ने जिनको दौलत दी है उनसे पूछ लीजिए, वो कहेंगे इनको क्या पता हमारे क्या हालात है, इनको क्या पता बैंक के बगैर तो आज काम ही नहीं होता, इनको क्या पता सूद के बगैर तो काम नहीं चलते, रिश्वत दिए बगैर तो जी आजकल कुछ होता ही नहीं है। ये बिल्कुल वही सेंटेंसेस हैं। क्या आप अपना दीन अपने पास रखे, जाइए आप फर्ज भी पढ़ चुके नफिल पढ़े, जाए शाबर जाके सुन्नतें पढ़े, जाए तस्बीह नमाज शुरू कर लें ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। लोग दीनदारों से सिर्फ दुआएं कराना चाहते हैं, वो उनकी जुबान से अपनी जिंदगी पर तनकीद नहीं सुनना चाहते, तो लिहाजा यही बातें करके उन्होंने इधर बात कर दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हर जगह आप नबियों का देखिए, और हजरत शुएब को खतीबुल अंबिया भी कहते हैं, कहते इतनी खूबसूरत बात करते थे कि जब बात करते तो लोग सुनते रह जाते, और इसमें आपको इसकी झलक दिखेगी। कहने लगे, भाइयों तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर था, फिर इसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिस्क भी दिया, क्या पता चला कि दीन का काम कर रहा हूं लेकिन भूखा नहीं मर रहा, रिस्क हसन मिला है मुझे। फरेब का रिस्क नहीं मिला, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम होरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ? और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ इनका खुद इर्तिकाब करूँ। मैं तो इसलाह करना चाहता हूँ जहाँ तक मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। इसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में इसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। ऐ बिरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हठधर्मी कहीं इस नौबत तक न पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह, यहूद, सालेह की कौम पर आया था, और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं। देखो, अपने रब से माफी मांगो और इसकी तरफ पलटाओ। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। क्या आपको शुएब अलैहिस्सलाम की इस पूरी स्पीच में कहीं ये मशवरा मिला कि ओके फिर बी कॉम्प्रोमाइजिंग, सिमिलेट देम, इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम, फिर अल्लाह को पता है कोई नहीं, फिर बाद में तस्बीह कर लेना लंबी सी, या वदूद की या गफूर की, चलो फिर जाओ जो हो रहा करो। किसी नबी ने वक्त के पीयर प्रेशर में आने पर दीन के हुक्म छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। आज अगर कोई दीनदार देता है तो वो ज्यादती करता है, और ऐसे ही दीनदारों ने दूसरों का भी हक मार दिया। फिर लोग कहते हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ओके, कोई कहता है नहीं। देखिए, सब नेचुरल पे रहेंगे, प्योर पे रहेंगे ना, तो किसी की अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। हजरत शुएब के इस जवाब पे अब जरा कौम का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, शुएब तेरी तो बहुत सी बातें मैं समझ ही नहीं आती। हमारे और आपके बीच में बैरियर है, आपकी तो वेवलेंथ ही नहीं हमसे मिलती। आज भी लोग ये कहते हैं, हम पढ़े लिखे माशाल्लाह बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल के, हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम यूएनओ में बैठते उधर जाते, और शुएब साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। आज भी यही है, वेवलेंथ नहीं मिलती दीनदारों से। और कैसे, और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है, तेरा कोई जोर ही नहीं, किसी सदर वजीर मशीर से कोई तेरे ताल्लुकात ही नहीं है। तेरी बिरादरी ना होती तो हम तुझे कभी का संसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना भी नहीं कि हम पे भारी हो। देखिए ये बातें कौन बोलता है जिसके दिल में इज्जत नहीं होती। हमारी नजर में जो बड़ा होता है ना, हम उसकी नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, और जिसको हम वैल्यू नहीं देते ना, हम उसकी केयर भी नहीं करते। यहां ये बात बता के उन्होंने बिरादरी का ताना दिया कि तू है भी तो मसला ये कि गैर बिरादरी का। जवाब सुनिए, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पोछ डाल दिया? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्मे भरा हूँ। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और इनके साथी मोमिनों को बचा लिया। वही बचते हैं, डोंट वरी, थोड़े से बच जाएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास हक था। और जिन लोगों ने जुल्म किया था इनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया कि वो कभी वहां रहे बसे ना थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। ये कौम भी गई, वो कहते ना खस कम जहां पाक, एक और कौम से जमीन पाक हो गई। यहां आप देखिए कि राह तुका, तेरी बिरादरी, सुन्नतों से ज्यादा जब लोगों को बिरादरियां और खानदान और उनके रस्म व रिवाज प्यारे हो जाएं तो ये तबाही की अलामत है। देखिए, खानदान की खिदमत करना अच्छी बात है, लेकिन ताजीम नहीं करना, आप कह लीजिए कि रिस्पेक्ट करना है, उनको होली नहीं बनाना। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप इससे इबरत लें। अब इसके आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तस्करा, और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानी और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और इसके आने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ती पर न था। अल्लाह कह रहे हैं कि फिरौन जो लोगों के लिए हीरो बना हुआ था उसका हुक्म दुरुस्त न था। क़यामत के रोज वह अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में ने दोजख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है ये जिस पर कोई पहुंचे, और जिन लोगों पर दुनिया में लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। कितना बुरा सिला है जो किसी को मिले। बस मूसा का इतना ही तस्करा इधर कर दिया, क्योंकि आगे भी बहुत जगह आएगा। क्या पता चला यहाँ किससे पूरे हुए? इमेजिन कीजिए मक्का में अल्लाह के नबी की मुखालफत जोर पकड़ रही है। अब सारी कौमों के किस्से हालात आपके जरिए मक्का वालों ने सुन लिए। क्या करना चाहिए था मक्का वालों को? फौरन तौबा करते, अल्लाह के नबी की वैल्यू पहचानते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। जिनके दिल में इबरत लेने का शौक नहीं होता ना, वो सारा कुरान भी पढ़ के इबरत नहीं ले पाते। इबरत वाले जहन से लेंगे तो बात समझ आएगी। फिर यहाँ एक और चीज देखिए जो बहुत ही खूबसूरत है, आप खुद इस चीज की तस्दीक करेंगी। जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी? हमारे मुल्कों में जब हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके पढ़ाने का और कुरान में हिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज आपने फर्क नोट किया? दो बातें करके ना, तो इबरत की बात, दिल नरम करने की बात, तकवा की बात, अल्लाह की मोहब्बत की। फिर थोड़ा सा किस्सा क्या बताए, अगर लोगों को हिस्ट्री पढ़ानी है तो इबरत के साथ पढ़ाओ। कम से कम स्कूल कॉलेज तक तो हमें ये पता ही नहीं चला था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या चीजें हैं। ट्रिप्स के साथ जाते थे, गए थे, पूरे फिरे, टीचर्स भी गई, हम भी गए, खाया पिया और दोस्तों के साथ मोहब्बत की बातें कर करा के शाम को बस में बैठ के वापस भी आ गए। मुझे नहीं याद कि हमारे ट्रिप के अंदर किसी ने हमें एक बार भी वहां से इबरत लेना सिखाया हो। इसी तरह का कोई तजुर्बा आपका भी हुआ होगा। आज हम इबरत के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, और ये कुरान जोग्राफी और तारीख ऐसे नहीं पढ़ा देता, यकीन करें लॉ भी पढ़ाता है। आपने सूरह मायदा पढ़ी है और आगे भी जाके पढ़ेंगे। इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को लॉ एंड शरिया एंड रूल्स लाइक इस तरह की चीजें, कुरान ने उसको भी इतना दिलचस्प बना दिया। हार्ट सॉफ्टनिंग, साथ एक हुक्म, फिर दिल नरम, फिर दिल सोजी, फिर कहीं जन्नत की बात, कहीं जहन्नम की बात। इसी तरह अपने बच्चों को सिखाया करें, सर पकड़ के उनके पीछे ना पड़े, एक बस कड़वा जुमला बोले, 3 सेकंड चुप रहे, उसके अंदर जाए। जब फील हो कि मासूम सर चेहरे पे रंग बदल रहा है, तो साथ ही सीने से लगा के उसको प्यार करें। नहीं मेरा बच्चा, देखना तू तो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। कभी एकदम थप्पड़ दो और एक पे दूसरा फतवे फतवे, और बिल्कुल बोलते ही ना जाए, कभी कोई नहीं आपकी बात सुनेगा। हम जब इतनी लंबी ग्रामर शुरू कर लेते हैं और सारे सीगे इस्तेमाल कर देते हैं उस वक्त बच्चों को समझाने के, तो बाद दफा वो फ्रेंड होते हैं। अल्लाह से सीखें कि अल्लाह किस तरह दिलसोजी करता है। क्यों आज भी ये किताब हम इतनी दफा पढ़ते हैं फिर हमें अच्छी लगती है? कितनी दफा आप सबने पढ़ा होगा ये पारा, कितने दौरे कुरान में? सच बताएं आपको पढ़ते हुए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनों को लग रहा है ये नबियों की कहानियां बोरिंग, इतनी ओल्ड फैशन बुक्स? इसके बरक्स आप हिस्ट्री की बुक खोले, मुझे खुद अच्छी तरह याद है, कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो खुद हैरान हूं कि ये मुझे इतना इंटरेस्ट हो कैसे गया। कुरान पढ़ने के बाद हुआ, जब सीरा पढ़ी उसके बाद हिस्ट्री से शौक हुआ। अभी भी आप सुनते हैं जब मैं ये ऐसे वाकया सुनाऊं, मैं अपने मेमोरी से सुनाती हूँ, लेकिन एक वो वक्त था कि जब अभी 10वीं तक तो आपको पढ़नी पड़ती है, उसके बाद तो मैंने भी साइंस ही पढ़ी, लेकिन उसमें हिस्ट्री थी, तो जिस दिन पेपर सामने होता था तो मैं रोती थी, कहती थी ये बाबे खुद मर गए, हमें मुश्किल में डाल गए। और क्या पढ़ाते थे? शाह वलीउल्लाह। अब नाम सुनी शाह वली, अब शाह वलीउल्लाह के नाम के साथ हुज्जतुल बालिगा सामने खुल जाती है, उनकी फौजुल कबीर और क्या कुछ कहानियां खुलती हैं, उनकी मेहनतें। और हमें क्या सिखाते थे? इस साल पैदा और सन याद कराते थे। भाई आपको क्या लगे उनके पैदा होने, और जो पूरा वक्त ज्योग्राफी और हिस्ट्री में सन लिख लिख के सफे काले कर देते थे, फिर गलत लिख के आते थे। जरा भी अच्छा नहीं लगता था ये सब्जेक्ट, क्योंकि तरीका बोरिंग है, बहुत बोरिंग तरीका। एक तस्वीर कलर सी बाबा जी की लगाई होती थी, और ये बाबा जी सर सैयद अहमद खान और वो, और कभी नहीं सोचा कि ये कौन शख्सियत थी। कुरान पढ़ा तो आंखें खुली, अब उन सब के नामों के साथ डिफरेंट फीलिंग्स हैं। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस किताब की कदर की तौफीक दे। अब आप कहानियों के एंड पे कंक्लूजन, ये ऐसे लग रहा है अल्लाह के नबी को मक्का में बिठा कर ये सारी कहानियां सुनाई गई, और क्यों सुनाई गई? ताकि आपका दिल मजबूत हो। अब अगला सब हिस्सा वो नबी सल्लम से खिताब है, क्या है? अब हम आपको इससे मॉरल्स देते हैं। कैसे? ज़ालिक मिन अंबाइल कुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। ये चंद बस्तियों की कहानियां हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी। हमने इन पर जुल्म नहीं किया और उन्होंने आप ही अपने ऊपर जुल्म ठाया। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इनके कुछ काम ना आए, उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवाय इन्हें कुछ फायदा ना दिया। याद रखिए, जितना किसी चीज की तरक्की का मान कर लें, जब पकड़ आती है ना मशीनें काम आती हैं, ना गैजेट्स काम आते हैं, ना रिसर्चेस काम आती हैं, और जो वाकई बुतों को पूछते थे उनके बुत भी आके उनको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचाए। हर कौम जो तबाह हुई जिसका हमने किस्सा पढ़ा है, उसके बुत थे, لیکن آپ نے کہیں بھی سنا کہ قوم سمود پہ عذاب آیا اور ان کا ایک بت آ کے کھڑا ہو گیا؟ کہیں بھی نہیں. آج بھی یہی ہے. آج کا بت سائنس ہے, آج کا بت بڑی بڑی مشینیں اور بڑی بڑی انونشنز ہیں. بعض لوگ اسی پہ مان کرتے ہیں, ہم نے یہ بنا لیا. وہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ ٹائٹینک کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا, وہ ڈبا کے دکھا دیا اللہ نے, کہ تم کیا سمجھتے ہو. تو یہ چیزیں بھی تب کام آتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ٹکتی. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے, فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے, وہ ایک دن ہوگا. اب آپ دیکھیں پھر دل سوزی ہے نا, یہی خوبصورت طریقہ ہے. سخت باتیں پھر جہنم پھر جنت ساتھ ساتھ چلتی ہیں. فرمایا وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے, پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ تاخیر نہیں کر رہے, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی, الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. آج تو بہت بولتے ہیں نا, قیامت کے دن کھگی بن جائے گی, زبان بند ہوگی, حلق خشک ہوگا, کوئی وہاں جا کے لمبی چوڑی باتیں نہیں پیش کر سکے گا. فمنہم شقیوں و سعید, کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. یہ جو زفیر اور شہیق ہے نا, گدھے کی آواز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گدھا ایک دفعہ اونچی آواز نکالتا ہے پھر آواز ہلکی کرتا ہے. ایک کو زفیر کہتے ہیں تو ایک کو شہید کہتے ہیں. یعنی جہنم میں گدھوں کی طرح ڈھنچو ڈھنچو کر رہے ہوں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے, دعا کیجیے اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں, تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. پس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں, یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں, اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کن میں سے کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا, جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور ہل جان میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ کا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. سوچیں, کوئی بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ کو سب پتہ ہے کون اس وقت بھی کیا کر رہا ہے. ہم تو چلے ایک دوسرے کے سامنے ہیں نا, کوئی ادھر ادھر بھی تو ہو سکتے ہیں نا, کوئی اکیلا بھی تو گھر میں ہے نا. کبھی تنہائی میں بھی اگر کوئی غلط کام کرنے کو دل چاہے تو اس آیت پہ نظر کر لیجئے, انہو بما تعملون بصیر, جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے اوپر لگی ہوئی ہے. لہٰذا بہت ہی خوبصورت آیت ہے, ہائی لائٹ کیجیے گا. فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. پس پھر کیا کریں, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں. یعنی کیا کہا, پس سے نبی آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا, اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کے رب کی نگاہ ہے, ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہارا کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ہوگا جو آپ کو اللہ سے بچا سکے اور کہیں سے آپ کو مدد نہ پہنچیں گی. اور دیکھیں نماز قائم کریں دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. مفسرین کہتے ہیں یہ ہیں وہ آیتیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے سر کے بال سفید کر دیے تھے. بڑی سخت آیتیں ہیں اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ بھی اگر ان کی طرف جھک گئے تو آپ کے اوپر بھی پکڑ آ جائے گی. ہم تو شکر ہے قرآن سمجھتے کوئی نہیں, اس لیے ہمارا بال ہی کوئی نہیں سفید ہوتا. जो इस किताब को समझ जाता है ना, वो इस गम में बूढ़ा हो जाता है कि वो नक्शे जो कुरान ने खींचे वो उसको इस दुनिया में नजर आते हैं। तो जब दुनिया में वही कुछ हो रहा है जो पिछली कौमों ने किया, तो इंजाम भी तो वही होगा जो उनका हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात की फिक्र लगा दे। फिर फरमाया, दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं, ये एक तस्कीर है। जालिका जिक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, इस कुरान का एक और खूबसूरत नाम जिक्रा, रिमाइंडर। भूल जाते हैं फिर अल्लाह याद दिलाता है, इन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। और सब्र करो, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। सोचे अपनी कोई नेकी सोचे जो आपने मुश्किल हालात में की, और आप फिर कहिए कि अल्लाह अजर जाया नहीं करता, तो खुशी हो रही है कि गम? खुशी होती है। फिर क्यों ना इन कौमों में से जो आपसे पहले गुजर चुकी हैं, ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान इन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। आपका रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि इनके बशिंदे इसलाह करने वाले हों। ये भी नोट कीजिए, जहां लोग इसलाह करें, खैर के काम करें, अल्लाह वहां कभी तबाहियां नहीं लाता। बेशक आपका रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना देता, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहेंगे, और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर आपके रब की रहमत है। नोट करें, कौन बेराह रो होने से और भटकने से बचता है? जिसपे अल्लाह का रहम हो। तो दुआ करते अल्लाह हमारी नस्लों पर अपना रहम कर दे। इसी आजादी, इंतखाब और इख्तियार और इम्तिहान के लिए तो इसने इनको पैदा किया था। वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, और आपके रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्न और इंसानों सब से भर दूंगा। सोचिए इस पे 3 सेकंड तक, जहन्नम को अल्लाह भरेगा, और हदीस में आता है कि अल्लाह जहन्नम को भरेगा, फिर उसके ऊपर ढक्कन डाल देगा, अपना पांव रख देगा, फिर वो कहेगी कित्तुन कित्तुन, फिर अल्लाह पांव उठाएगा। जैसे तंदूर में रोटियां लगाकर या ओवन में चिकन डालकर ऊपर से बंद कर दे, अल्लाह कहते हैं मैं भरूंगा जहन्नुम में। तो आप और मैं इसको झुटला सकते हैं? आज ये भी एक डाउट है कि नहीं, ये रियल जहन्नुम नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी थिंग है, बस ऐसे ही वो जले भुलेंगे। ये जलना वही है जो हम उर्दू में कहते हैं मैं जल के रह गई, हालांकि अल्लाह कह रहे हैं मैं जहन्नुम में डालूंगा। वकुल नकुस्सु अलैक मिन अंबाए रुसुल, ए नबी, ये पैगंबरों के किस्से जो हम आपको सुनाते हैं, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम आपके दिल को मजबूत करते हैं कि फिक्र ना करें, पिछले नबी भी झुटलाए गए, आप भी झुटलाए जा रहे हैं, लेकिन मदद एंड पे नबियों की हुई। इनके अंदर आपको हकीकत का इल्म मिला, और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते, तो इनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो, और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। इंजाम कार का तुम भी इंतजार करो, और हम भी मुंतजर हैं। आसमानों जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, और सारा मामला इसी की तरफ रुजू किया जाता है। बस है नबी, इसी की बंदगी कीजिए और उसी पर भरोसा रखें। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो आपका रब उससे बेखबर नहीं। तो ये थी सूरत हुद।
إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
सूरत यूसुफ, चंद बातें सूरत यूसुफ की। पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूसुफ को बहुत दफा हमने पहले भी पढ़ा, हर साल कुरान पाक के तफसीर के सेट में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसको हमने लाहौर में एक कोर्स के अंदर पेरेंटिंग के तौर पे भी पढ़ा था। आप में से जिसको बच्चों की तरबियत के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए हो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खास तौर पे एक बाप के नाते से वहां हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। आज हम इसको जिस नजर से पढ़ेंगे वो है उम्मत वसत के हालात। बहुत गहरी मुमासलत है। थोड़ी सी यहाँ आपको फिर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर हम इसमें से अपने लिए अमल की बातें ले नहीं सकेंगे। तो बनी इसराइल बैतुल मक़दस में रहते थे, मुल्क शाम हर नबी का मुल्क और वतन रहा। जैसे आप सोचिए कि आपका मेरा अपना होमलैंड है, उसी के साथ मामला था। एक सवाल अल्लाह के नबी सल्लम के सामने पेश किया गया और वो क्या था कि ये बताइए कि वो बनी इसराइल जिनका मदर लैंड बैतुल मक़दस था वो मिस्र में कैसे आ गए? क्योंकि जो ही आप फिरौन और मूसा का किस्सा पढ़ते हैं तो बनी इसराइल मिस्र में दिखते हैं, पीछे आप बड़ी डिटेल से पढ़ चुके। ये वो सवाल था जिसका जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता था। तो सूरत यूसुफ में अल्लाह सुबहान तआला ने बनी इसराइल के बैतुल मक़दस से निकलकर या मुल्क शाम से निकलकर मिस्र में आने की हिस्ट्री बयान की। हम इसको अपने लिए किस तरह समझेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें ताकि आज हम इस सूरत को एक डिफरेंट एंगल से समझ सकें। और वो क्या है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत यूसुफ का दौर गुजरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे, बैतुल मक़दस में थे। मैं इनको अपने लफ्जों में आपकी पूरी कहानी थोड़ी सी सुनाकर फिर उस मुकाम पर ले चलूंगी जहां से कुरान ने शुरू किया, ताकि आप भी तो इंजॉय करें और देखें कि आखिर अल्लाह ने इस किस्से को इतना क्यों एलेबोरेट किया है। तो जितने भी नबी थे, हजरत इसहाक और हजरत याकूब और सारे ये बैतुल मक़दस में थे, वहीं रहते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उसी नस्ल का एक हिस्सा थे। अल्लाह सुबहान ताला ने इनको 12 बेटे दिए। इन 12 बेटों में फर्क किस चीज का था? माएं दो थी, यानी दो बीवियों से हुए थे। हजरत यूसुफ और बिनजामिन, जिसको इंग्लिश में बेंजामिन कहते हैं, ये दोनों एक मां से थे और बाकी जो भाई थे वो दूसरी मां से थे। अल्लाह सुभान ताला ने बनी इसराइल का मुकद्दर बदलना चाहा। मुल्क शाम उस वक्त का एक बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, आज की जुबान में कमजोर गरीब मुल्क था, जबकि मिस्र इजिप्ट उस दौर की वेस्टर्न कंट्री समझे, यानी बहुत तरक्की याफ्ता था। अल्लाह सुबहान ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसे हालात से गुजारा कि जिससे गुजरने के बाद वो बैतुल मक़दस या कनान के एक छोटे से शहर या गांव से निकालकर मिस्र, जो उस वक्त की सुपर पावर थी, वहां पहुंचा दिया। ये एक तब्दीली का आगाज था। जैसे हम आज उम्मत वसत और उम्मत मुस्लिमा की बातें करते हैं ना, असल में आप देखें तो ये बनी इसराइल के लिए एक गोल्डन चांस था। ये ऐसी जैसे आप में से, मेरे में से कोई पाकिस्तान या इंडिया के किसी गांव से उठाकर इस किसी वेस्टर्न कंट्री के बड़े आला किसी मुल्क में बिठा दिया जाए, एक बिग चेंज था। अल्लाह सुबहान ताला बनी इसराइल के हालात बदलना चाहते थे। हजरत यूसुफ के साथ जो है वो तो एक अलग हिस्ट्री है। हम इसको देखते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हालात के उतार चढ़ाव से गुजार कर, जो हम इस सूरत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक ऐसा दौर आया कि मिस्र के वजीर खजाना बना दिए गए, यानी मनी अफेयर्स उनके नाम पे आ गए। जब वो इधर आए तो कनान में या बैतुल मक़दस या मुल्क शाम में कह लीजिए कि बिग कहत था, उस कहत से बचाते हुए भी और शाही मेहमान के तौर पे बनी इसराइल में से बहुत सारे खानदान मिस्र में भेज दिए गए। ये एक तब्दीली का सफर था और आप समझिए कि उस वक्त वो उस दौर के मुसलमान थे। अल्लाह ने उस दौर के मुसलमानों को एक छोटी सी जगह से निकालकर एक बहुत बड़ी तरक्की याफ्ता जगह में रखा। क्यों रखा? ताकि वहां उनके जरिए से अल्लाह का दीन फैले। अब मैं इसको जरा आपके साथ और अपने साथ ले आऊं। हम अपने किसी छोटे से मुल्क में थे, शहर में थे, गांव में थे, जहां भी थे, किसी भी हालात के तहत मैं और आप बाहर पहुंच गए। या ये खिताब असल में सूरत यूसुफ इस वक्त आप और मैं पढ़ेंगे, पीपल लिविंग इन वेस्ट, उनकी जिम्मेदारियां और उनके मसाइल। जब हम अपने मुल्कों में छोटी सी जगहों में रहते हैं तो हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं, बहुत खुल के गुनाह के मौके भी नहीं मिलते और हम महफूज होते हैं। जो ही हम वहां से निकालकर वेस्टर्न कंट्रीज में भेज दिए गए, कोई पढ़ने के लिए आ गया, कोई जॉब के लिए आ गया, किसी को अकेले रहना पड़ा, किसी मर्द को बेचारे को भाई दोस्तों के साथ रहना पड़ा, वहां आकर इम्तिहान शुरू हो जाता है। जब हम किसी वेस्टर्न कंट्री में आते हैं तो हम बाज़ औकात फिर उस जगह के रंग ढंग को अपना लेते हैं, और चूंकि मादर पितर आजाद है, अम्मी नहीं घर, अब्बू नहीं रहा घर, तो किसका डर है, यही होता है कि वेस्ट में आके जब मुसलमान बिगड़ने लगते हैं इस ख्याल के तहत, नंबर एक हमें कोई पूछ नहीं रहा, दूसरी बात हम मजबूर है, और वो हराम में पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी जॉब्स उनको ऑफर की जाती हैं जिसमें नाफरमानी है लेकिन उनके पास और कोई स्किल्स नहीं होती, तो वो वहां आकर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको भेजा था उससे दूर हो जाते। बनी इसराइल हजरत यूसुफ के खानदान के लोग होने की वजह से जब मिस्र में आए, इंतहाई इज्जत उनको मिली, शाही मेहमान बने। कुछ अरसे के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर इंतकाल हो गया। अब क्या हुआ, इनको करना क्या था, ये मिस्र को मुसलमान करते हैं, लेकिन मिस्र को इन्होंने मुसलमान नहीं करना था, वो उमर बिन अल आस के हाथों अल्लाह ने मुसलमान करवाया उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द से। अगर बनी इसराइली मिस्र या उस दौर में उस वेस्टर्न कंट्री में जाते और अल्लाह का पैगाम फैला देते तो ये रुतबा ये ऑनर उनको मिलती, लेकिन वही हुआ जो शम्मा से दूरी पे होता है, थोड़ी सी दौर गुजरी तो फिर बिगाड़ आ गया, फिर आपस में लड़े मरे, और फिर वो सारी हिस्ट्री जो आप सूरह बकरा में बनी इसराइल की पढ़ चुके हैं वो इससे आगे है जो मैं अब आपको सुनाना नहीं चाहती। फिर कैसे जो बाबुल शहर में इनको गुलाम बनाया गया और कैसे बैतुल मकदस की ईंट से ईंट बजाए, आज जो शाही मेहमान बन के मिस्र में भेजे गए थे, बड़े जलील होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये हालात बन गए, और अल्लाह ताला ने इनको फिर धक्के दिलाए। दूरी बतलाए मुजिल वल मस्कना, आगे सूरत बनी इसराइल आ रही है 14th पारे के शुरू में, वहां भी थोड़ा सा आपको इससे रिलेट कराऊंगी, क्या पता चला, खुलासे पे आ जाए, हिस्ट्री को छोड़ देते हैं। बनी इसराइल को अल्लाह ने एक बिग कॉज के लिए इजिप्ट में भेजा था और उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, निकाल दिया, और जिसके नतीजे में फिर उनको कई साल की मार खानी पड़ी। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त नुकता है गौर का, हम में से हर एक जिसको अल्लाह ने वैस में रखा है, पहली बात है आप इस निकलने को और इधर पहुंचने को अल्लाह की एक बिग ब्लेसिंग समझे, नंबर एक अपॉर्चुनिटी समझे। किस चीज की अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू डू दावा, अपॉर्चुनिटी टू गिव देम इस्लाम। देखिए जब आप किसी चीज से दूर होते हैं ना तो आपको उससे बहुत बेगानगियत होती है, लेकिन जब एक चीज आपके साथ है, रोज है, इधर उधर मिलते हैं देखते हैं, तो घुलने मिलने से फ्रेंडली हो जाते हैं ना। हम मुसलमान जब तक दूर है गैर मुस्लिमों से, वो हमारे बारे में नहीं जानते, मीडिया में बदनाम करे, मीडिया में कुछ भी करे, वो कहेंगे ये होते ही बुरे लोग हैं, लेकिन अब उनके नेबर में एक घर में मुसलमान आ गया और वो मुसलमान वाकई मुस्लिम है, आते जाते हेलो हाय बाय, फिर करते करते अलैक्स लैक, खाना भेजा, खाना लिया, दिया लिया, और थोड़ी देर बातों में आहिस्ता आहिस्ता जब मैसेजेस पास हुए तो वो एक बेगानगियत खत्म हुई ना, जब बेगानगियत खत्म हुई तो दिस इज द पॉइंट टू डू दावा, बात वाज़े है। जब मुसलमान इस तरीके से वेस्ट कंट्रीज में रहते हैं जिस तरह के रहने का हक है, तो ये रहना उनके लिए नेमत बन जाता है, मुस्लिम बन के रहते हैं, नंबर एक जमीन अल्लाह की है, जहां भी रहे मुस्लिम बन के रहे, और दूसरी बात है कि किसी के प्रेशर में आने की बजाय आप उसको प्रेशर दें इस्लाम का, तीसरी बात है किसी के रंग में रंगने की बजाय आप उसको अपना रंग दें। जब मुसलमान ये करते रहे, ये 120 के करीब मुल्क बनते गए, आज जितने मुस्लिम मुल्क हैं ये पहले नॉन मुस्लिम मुल्क थे, ये किस तरह से हुए, ये मुस्लिम्स की नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने की वजह से हुए, माइग्रेशंस में। आज हम ये फतवा तो बड़ी आराम से दे देते हैं कि दारुल कुफर में रहना हराम है, वापिस आ जाओ, तुम्हारी रोजी हराम, तुम्हारी रोटी हराम, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या आप मैं दुनिया में इस तरह की दीवारें खींच सकते हैं कि दीवार के इस पार सारे मुस्लिम और उस पर सारे नॉन मुस्लिम, और आप ये जाहरी दीवारें खींच भी लेंगे ना तो मीडिया के जरिए और जहनों के जरिए दीवारें तो हटी हैं, नेट तो आप पाकिस्तान में अगर एक डालते हैं नंबर, तो अमेरिका में आने तक सेम ही नंबर पे चलता है। मेरा एक मुल्क का नेट डला हुआ है, मैं हर मुल्क में जाती हूँ, मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। तो वो बाउंड्रीज तो आज खत्म हो चुकी हैं। आज करने की जिम्मेदारी, ये सूरत यूसुफ का मैसेज है कि बिगड़ी हुई औलादों की सलाह कर लो। हमारे साथ क्या रोना हुआ? वही रोग हुआ जो हजरत याकूब के साथ हुआ, के बजाय इसके कि वो वहां अपने आप को संवारते सुझाते, वो बिगाड़ का शिकार हो गए। आज हम मुसलमान कहते हैं हमारी नस्लें बिगड़ गई, नस्लें बिगड़ रही हैं, वजह क्या है? हम कहते हैं यहां हम हराम खाते हैं, वजह क्या है? हम कहते हैं हम यहां फलां चीजें पहनने ना तो हमारा गुजारा नहीं होता, वजह क्या है? 101 चीजें अपने प्रॉब्लम लिखिए, वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स के प्रॉब्लम रियली हैं, अगर आप दर्द रखते हैं तो हैं। आप उस सारे प्रॉब्लम्स लिख लें, आपको इस सूरत में उसका जवाब मिल जाएगा। और आज भी अगर हम मुसलमान आंखें खोल के जीना सीख लें, अपने दीन से शर्मिंदा होने की बजाय अपने दीन पे फख्र हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि फिर दोबारा चेंज आएगी। सिर्फ एक यूसुफ अभी हम देखेंगे कि इजिप्ट गए थे, ओनली वन यूसुफ जो गुलाम है, जो लॉस्ट चाइल्ड है, जो किडनेप्ड किड है, लेकिन उस बच्चे ने अपने ईमान, इखलास, अपने एहसान, तकवा से इतनी जगह बना ली कि जिस घर में गए इज्जत पे। चार वाक्यात हम पढ़ेंगे सूरत में, जो हिकमत, फहम, फरासत और मामला फहमी की बेहतरीन मिसाल है। यूसुफ की जिंदगी एक सी सॉ लगेगी आपको, मुझे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या तो बहुत ऊपर या फिर बहुत ही नीचे, लेकिन हर हाल में वो मुस्लिम रहे। और अल्लाह ने फिर उनको जो इज्जत दी कि उस गैर मुस्लिम मुल्क के बादशाह ने खुद आपको ऑफर दी कि आप आइए और मेरा मुल्क संभालें। बात बड़ी करने लगी हूं, अल्लाह ताला बस खैर की बना दे। अगर हम मुस्लिम स्किल्ड हो जाएं, अगर हम वो सारी स्किल जो अल्लाह और उसके नबी के जरिए से हमें मिली वो ले लें, आज हम खुद इनवाइटेड पर्सन होंगे कैबिनेट्स में कि आप आइए, आप मनी अफेयर चलाइए, हमें पता है कि इस्लाम का मनी मैटर बहुत अच्छा है। शर्त एक है, हमें खुद तो बताओ। बात वैसे हमारा हाल यह कि हमें एक अनाड़ी ड्राइवर की तरह एक गाड़ी में बिठा दिया गया और हमें खुद गाड़ी नहीं चलानी आती, तो धक्के देते हैं कभी ओवर स्पीडिंग कभी कम, और लोग बदनाम करते हैं इस्लाम को। छोटी सी उम्र में एक यूसुफ को अल्लाह ने बाप की गोद से निकालकर एक ऐसी बड़ी ताकत के घर में भेज दिया कि अगर यूसुफ की वो ट्रेनिंग ना हुई होती तो वो भी तबाह बर्बाद होते। अब शुरू करते हैं और इसको इंशाल्लाह बीच में जहां जहां होगा, लेकिन रिश्तों को कैसे हैंडल करें, कैसे हम इंसानों के साथ मामला करना सीखें, आपको इस सूरत से मिलेगा। बच्चियां कैसे घरों में जाएं और किस तरह अपनी जगह बनाएं, और जिस माहौल में दिल फेंक औरतें हो, जहां मर्द तो मर्द बच्चे भी अपनी नजरें ना उठा सके, बच्चे वो लफ्ज बोलने लगे जो हम उस उम्र में नहीं बोलते थे, तो वहां फिर अपने ईमान को कैसे सलामत रखना है, इसका इलाज है। इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि हम इसमें से कुछ एंड पे वाकई आज के हालात के लिए पॉइंट्स पिक करके उसको हम करने वाले बन जाए। सारे बेस्ट नहीं छोड़ सकते। अब पता नहीं मेरी इन बातों पे कई लोग क्या फतवे भी दे देंगे कि ये कितनी शद्दोमत से कह रही हैं कि इधर रहना गुनाह नहीं है। मैंने ये कुछ नहीं कहा, मेरा एक एक लफ्ज आप उस लफ्ज पे तोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप मुस्लिम बन के रहते हैं, अल्लाह के दीन पे फख्र है, आप दुनिया की किसी जगह पर रहें पूरे यकीन से रहें, वो आपके रब की है। ये दुनिया किसी और की नहीं है, आपके मेरे रब की है। किसी को हक नहीं है आपको रुकने का। और अगर आपने मुस्लिम बन के नहीं रहना ना, अगर आप इस्लाम पे शर्मिंदा हैं और आप अपने इस्लाम से दूर हैं, तो फिर आप सऊदी अरब जाके देखिए तो वहां भी यही रोग है। कल किसी जगह हम थे तो एक ब्रदर जो मेरे ख्याल के मुताबिक सऊदी हैं, तो उन्होंने माइक पे आके अनाउंस किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टेक केयर करें, वो अपने स्मार्टफोन्स पे मस्जिद में पीछे बैठ के वॉकमैन्स पे कुछ सुन रहे हैं और कुरान तरावी नमाज चल रही है। तो यही हरम की हद में भी आपको मंजर दिखेंगे। तो याद रखिए, जब तक हम नहीं संवरेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। आइए अब सूरत यूसुफ को लेते हैं, है तो कहानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयत है जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। यानी किताब कुरान को किसी और डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती समझने के लिए सिवाय सुन्नत की डिक्शनरी के। हमने इसे नाजिल किया कुरान बनाकर अरबी जुबान में ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। क्या पता चला? کتاب کو اپنی زبان میں سمجھنا لازم ہے. چونکہ عربوں میں اتری تو عربی میں تھی, تو اردو والے لوگوں کو اردو میں پڑھنی پڑے گی, انگلش والوں کو انگلش میں پڑھنی پڑے گی, ادروائز اس کتاب کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اے نبی, ہم نے قرآن کو آپ کی طرح وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ پر بیان کیے, ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, ورنہ وہ آپ کو تکلیف دینے پر آ جائیں گے. حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے. آپ کا رب آپ کو اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی تہ میں پہنچنا سکھائے گا, اور آپ کے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا. یقیناً آپ کا رب علیم اور حکیم ہے. ہائی لائٹ کیجیے حضرت یعقوب کی یہ پیاری سی نصیحتیں آیت 6 میں جو انہوں نے کی ہیں. یہ ہے آج کے ویسٹرن باپ کو اپنے بیٹے کو کرنے والی نصیحت, کہ آپ کو بھی بیٹا اللہ چنے گا, آپ کو بھی اللہ حکمت دے گا, فراست دے گا, معاملہ فہمی دے گا. انسان جتنے بھی اوپن ماحول میں رہتا ہے نا, اتنا اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے. نیرو برتن ہوگا, تھوڑی سی چیز ڈالے گی برتن بھر جائے گا. بڑے برتن میں جتنا بھی ڈالتے جائیں جذب کرے گا. وہ بچے جو گھٹے ہوئے تنگ ماحول میں رہتے ہیں نا, ان کی سکلز گھٹ جاتی ہیں, تنگ ہو جاتی ہیں. جو لوگ پیدا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں گیجٹس پکڑا دیے جائیں, کمپیوٹرز پہ وہ کام کریں, اور جہاں ہر چیز کو اوپن کر کے اور کہا جائے کہ یو آر کانفیڈنٹ اور یو آر ایٹ یور اون, ایسی اولادیں اور ایسی نسلیں مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. حقیقت میں ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے. بچے کو آپ جتنا زیادہ رسک فری پالیں گے نا, وہ اتنا بریو ہوگا, اتنا طاقتور ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہاں حضرت یوسف کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہم نے پڑھا. چند باتیں اس میں سے نوٹ کیجیے. پہلی بات یہ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. حضرت یوسف نے اپنا اصلی خواب باپ سے شیئر کیا. اسی طرح آج ہمارے بچوں کو اپنے ڈریمز, اپنے ویوز, اپنی پسند, اپنی ناپسند ہمارے سے شیئر کرنے کا حق ہونا چاہیے. کیونکہ جب بچے ماں باپ سے باتیں نہیں کرتے, ماں باپ کے ساتھ باتیں نہیں شیئر ہوتی ان کی, تو پھر وہ دوسروں سے کرتے ہیں, پھر باہر جاتی ہیں, پھر خرابیاں ہوتی ہیں. تو آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کے ساتھ ون آن ون بیس پہ تعلق رکھیں. میں اکثر ماؤں کے نصیحت کرتی ہوں اسی بات کی, کم از کم 15 منٹ آپ نے اپنے ہر بچے کو الگ سے دے لیں. مثلا اگر آپ کے 4 بچے, تو آپ 24 گھنٹے میں سے 15-15 منٹ کر کے 1 گھنٹہ کیسے سپینڈ کریں. 1 گھنٹہ منع کے ساتھ, 1 گھنٹہ چننے کے ساتھ, اور 1 گھنٹہ منی کے ساتھ, اور 1 چننی کے ساتھ. انسان جو ہے نا, اس کے اندر انس ہے. جانور ہو یا انسان ہو, بچہ پیار چاہتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو الگ سے ٹائم دیتے ہیں, ان کو لمس کرتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں, بہت چھوٹے بچے سے یہ شروع کریں, پیار کریں, اس کے بالوں کو چھوئیں, اس کے پاؤں کو چھوئیں, آپ فیل کریں گے کہ وہ آپ کی قربت پاتا ہے. اور ہم تو اس کو اتنے کپڑے پہنا دیتے ہیں, وہ نیچے گر بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اوپر کپڑے اتنے, اور پھر مائیں ان کے ہاتھ باندھتی ہیں. آپ کبھی ناروے میں دیکھا کریں, جب بچے باہر جاتے, بلیو می, وہ پلاسٹک کے بیگ لگتے ہیں. ایک بچہ ایک دفعہ سو ٹیبل پہ ماں نے اس کو رکھا, اسکول کے ٹیبل پہ اس کو پیک بک کر چکی تھی ماں, ادھر بھی بچہ پورا لڑک پڑک کے نیچے گرا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ماشاء اللہ, کیونکہ وہ چاروں طرف فارم کی جیکٹ اور ہاتھوں پہ گلاس پہناتی ہیں, بال کانوں پہ, انگلیوں پہ چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کیا کچھ پہنا کے ان کو بڑھاوے سے بنا دیتی ہیں. تو وہ بچوں کو کچھ نہیں ہوتا. اپنے بچوں کے ساتھ بے تکلفی کریں, یہ آج کے دور کا ایک بہت مسئلہ. وہ کب جاگتے ہیں, وہ کب سوتے ہیں, یہ آپ کو بتانا چاہیے. آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک کیا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بیچ میں ہماری ایک لائن کھینچ گئی. مائنڈ نہ کیجئے گا, میں نہیں کہتی کہ ایسا وہ سوچتے ہیں, لیکن ان کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کو کیا سمجھ آتا ہے, امی ان کو کیا آتی, انگلش آتی نہیں, اور ابو ان کو کیا آتا, ان کو تو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا, اور آپ کو تو آئی پیڈ ہی نہیں یوز کرنا آتا, اور آپ تو بس کبھی نہیں سیکھیں گی فون, اور آپ ہمیشہ غلط ہی بٹن دباتی ہیں. اندر سے ایک ایسی رونت ہے. مجھے یوتھ بہت اچھے لگتے ہیں, سبھی کو اچھے لگتے ہوں گے, لیکن جو بچے آپ کو آگے سے رسپانس نہ دیں, معذرت کے ساتھ میں اس کو ایٹیچیوڈ کہتی ہوں. कि आप इस काबिल नहीं है कि आप उर्दू बोलने वाले से ठीक बात करें। एक गैप डाल दिया, लैंग्वेज बैरियर है, बच्चे उर्दू नहीं समझते। बच्चे आपको कब अपने ख्वाब सुनाएंगे, कब शेयर करेंगे, जब आपकी जुबान उनकी एक होगी। एक कमी जो मैंने खुद पिछले 15 साल में ऑब्जर्व की है, जो वेस्ट में रहने वाले पेरेंट्स की हुई, आप गौर करो इनके मैं जो बात कहने लगी हूं, माँ बाप उर्दू बोलते हैं या कुछ भी, मैं इस वक्त उर्दू के हक में नहीं हूं, मैं बीच के कम्युनिकेशन की बात हूं। बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो माँ बाप समझते हैं, माँ बाप उर्दू बोलते हैं तो बच्चे उर्दू समझते हैं, लेकिन बच्चे उर्दू बोल नहीं सकते, माँ बाप इंग्लिश बोल नहीं सकते। क्या आज बहुत सारे घरों में ऐसे नहीं है? हुआ क्या कि बच्चा इंग्लिश में स्कूल की बातें सुनाता रहा, माँ उर्दू बोलती रही, बच्चे को माँ की उर्दू समझ आ गई, लेकिन वो जवाब इंग्लिश में देता रहा, माँ को इंग्लिश सुननी आ गई, बच्चे को उर्दू सुननी आ गई। इट्स नॉट द राइट वे। देखिए ये जो कोई कहता है ना उर्दू इज अ डाइंग लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है खतरे का। मैं नहीं कहती कि उर्दू अच्छी है और उर्दू पढ़ने से आपके बच्चे नेक हो जाएंगे, लेकिन मानिए ना मानिए, हम सब जिस खमीर से उठते हैं हम उसी में क्लोजनेस फील करते हैं। कभी अपने बच्चों को अपनी जुबान से ना काटें। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ख्वाब दिखाया, उस ख्वाब की ताबीर कितनी खूबसूरत की बाप ने, कि बेटा अल्लाह आपको बहुत बड़ा बनाएगा। आज वल्लाही कसम नहीं खाना चाहती, लेकिन आज हमें अपने बच्चों को यही ड्रीमिंग करवाने की जरूरत है। उठते बैठते प्यार से, जवान होते छोटे बड़े बच्चों को यही कहें जो हजरत याकूब ने कहा कि वकजालिका यजतबी का रब्बुका, मेरा ये बच्चा है वो अल्लाह इसको देखना चुनेगा। अपने बच्चों का मोरल बुलंद करें। बाज दफा हम बचपन में चूंकि बहुत लाड देख चुके होते हैं, फिर हम थक चुके होते हैं और वो हमारे हाथ से निकल गए। इधर वो जवान हुए झूम के, उन पर टीन एज आई, उधर वो हमारे हाथों से निकल गए, तो फिर अखीर उठते बैठते हम उनको सलवातें सुनाते हैं। तुम बिगड़े हुए, नमाज पढ़ लिया करो, कपड़े ठीक करो, ढंग से पहनो, सही बैठो, इधर रहो, साथ बैठा करो, चलो हमारे साथ। फिर वो जो 2-4 कड़वे जुमले बोल के माहौल खराब करके घर से निकलते हैं, तो बच्चे भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं है। इसको चेंज करने की जरूरत है। अपने बच्चों को रोज 15 मिनट माएं ख्वाब दिखाएं, हर 15 मिनट में किसी एक मुस्लिम हीरो से उनको मिलाएं, फिर आप देखिए आपके बच्चे कैसे चेंज लाते हैं। स्कूलों में कितनी कुदे रहते हैं बच्चे, और कितना कुछ पढ़ाना होता है स्कूल वालों ने। आप माँ वो सिखा सकती हैं जो दूसरे नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को ड्रीमिंग करवाएं। फिर युअल्लिमुका मिन तावील इल हदीस, ये मेरा बच्चा बहुत जीनियस बनेगा, इसको देखना अल्लाह ताला वो ब्रेन देगा कि जिससे होगा। आप अपने बच्चों की स्किल्स को आगे लाएं। आप समझते हैं ना आपका बच्चा 8 साल का है, तो बिलीव मी आज के दौर में आप उसको कम अज कम 10 साल का सोचे, और आपको लगता है आपका बच्चा 12 साल का है, आप उसको 14-15 का सोचे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा उनकी ग्रूमिंग हो रही है। दुनिया ने तो उनको वक्त से पहले वो सब दुखा और सुना दिया जिसकी जरूरत उनको कहीं जाके शादियों के बाद पड़ती। तो आपके बच्चे छोटे नहीं है, आज हमें जरूरत है इस बात की कि उनको ऊपर लेके चलना। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक आइडियल बाप की सूरत में, और मैं कहती हूँ आज के बाप अगर याकूब अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बना लें तो 50-60 साल की बात है, एक जनरेशन गुजरेगी तो उम्मत मुस्लिमा का नसीब ऐसे ही बदल जाएगा जैसे हजरत यूसुफ और याकूब और उनके हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इन चीजों को लेकर चलें। फिर उसके बाद देखिए कि इसमें इन्होंने अपने बच्चों को ये क्यों कहा कि अपना ख्वाब दूसरों को न सुनाना, और आने वाले किसी खतरे से डराना और आगाह करना ये माँ बाप का फर्ज है। आप अपने बच्चों से जितने मर्जी बेतकल्लुफ हो, जितना मर्जी आप उनके साथ अच्छा मामला करें, लेकिन एक डिस्टेंस जरूर रखें। आप कब पर हैंड, अगर वो 49 है तो 51 पर है। आज ये भी एक बहुत मसला हो गया, हमने बिल्कुल बराबर पे खड़ा कर दिया, बल्कि ऊपर है बच्चे, वल्ला ही गलत ना मैं कहूं तो। आज हम अपने बच्चों से डरते हैं, बच्चे हमसे कम डरते हैं। आज हम सारा दिन उनको खुश करना चाहते हैं, पहले बिल्कुल अपोजिट हालात थे। मैं इसको पेरेंटिंग में नहीं लेके जा रही क्योंकि वहां हमने बहुत डिटेल से इसको हर एंगल से देखा हुआ, लेकिन फिर वही कहूंगी कि आज के लाइफ स्टाइल में ये लाजिम है कि आप अपने आप को बच्चों से एक हैंड ऊपर रखें। कुछ भी है, एक बच्चा ऐसी कोई बात कर रहा था, दिस एंड दैट, अम्मी दिस वो, तो मैंने एक जुमला बोला उसके सामने, बेटा आप कितने भी सच्चे क्यों ना हो, कितने भी स्किल्ड ना हो, मैंने उसकी माँ से पूछा जब ये पैदा हुआ था आप कितने साल की थी, कहने लगी 18 साल की थी, पहला बच्चा था उनका। मैंने कहा बेटा यहां बैठ के इस बात पे गौर करो, आप अपनी अम्मी से 18 ईयर्स छोटे हैं। क्या ये बात काफी नहीं है आपकी अम्मी के अक्लमंद होने की या आपसे बड़े होने की? बच्चा खामोश हो गया। अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि हम आपसे 15-20 साल पहले इस दुनिया में आए थे। जब हम बुद्धू बन जाते हैं और हम भी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, हाँ हमें इंग्लिश नहीं आती, इनको आती है, हमें कंप्यूटर नहीं चलाता आता, इनको आता है, ये वेस्टर्न स्कूलों में गए, हम तो बेचारे पता नहीं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में गए, इस कॉम्प्लेक्स को निकाल दें तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे फायदा होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अब आगे से असल किस्सा शुरू होता है, और वो क्या है, इस कालू लयूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना। हकीकत ये है कि यूसुफ और इनके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानी है। ये पूछने वाले कौन थे? मदीना के लोग। उन्होंने अल्लाह के नबी को आजमाना चाहा था कि भला ये नबी हैं कि नहीं, क्योंकि हजरत यूसुफ का किस्सा मक्का में कोई नहीं जानता था। अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल करके उनको यकीन दिला दिया कि ये अल्लाह के नबी हैं। फरमाए इसमें निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इनके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं। ये गुमान हर बच्चे को होता है। देखिए आपका जब सेकंड बच्चा होगा ना, तो उसको पहले बच्चे को फील होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरे जगह पे आ गए। आप नोट करें, जब घर में छोटा बच्चा आता है ना, तो पहला बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको खींच के गोद से निकाल के खुद जाके बैठ जाएगा, अक्सर उसका फीडर लेके पीना शुरू हो जाएगा, माँ उसको पकड़ेगी तो बच्चा रोता है। ये एक फितरी सी बात है। हजरत यूसुफ के जो दूसरे भाई थे, उनको जो बात लगी वो हकीकत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि अब्बा हमसे ज्यादा प्यार नहीं करते, हालांकि हम एक पूरा गिरोह हैं। ये सोचते कि अब्बा को इनसे प्यार क्यों है। आज भी देखिए, जब आपको कभी ये लगे ना कि मेरे से ज्यादा अम्मी दूसरी बहन को प्यार करती हैं, या मेरे से ज्यादा अब्बू दूसरे भाई को प्यार करते हैं, तो ये सोचिए कि उसमें खूबी क्या है। आप खुद माएं, आप इस बात की गवाही देती है ना, सारे बच्चे आपके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस बच्चे में दिल पड़ा रहता है? जो बादब है, जो बानसीब है, जो अच्छी तरह बात करता है, टिकेट अच्छे है उसके। तो हमेशा इंसान अपने एटीट्यूड और अपने रवैयों से मोहब्बत लेता है, लेकिन शैतान उस वक्त दूसरों को सामने खड़ा कर, बिल्कुल वही कहानी है जो हाबील और काबिल की थी, कि अपने ऊपर नजर डालने की बजाय दूसरी की तरफ कर दी। आगे आप इनका एटीट्यूड खुद ही देखेंगे कि उनको इन सारी चीजों में क्या वजह थी कि वो इस चीज को महसूस करते, क्योंकि उनका अपना अखलाक अच्छा नहीं था। सच्ची बात यह कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। हाईलाइट करें, आप इस इंग्लिश को कैसे कहेंगे? माई डैड इज स्टुपिड। मैंने ये जुमला एक बच्ची के मुंह से सुना है, माई मॉम इज स्टुपिड। तो माँ को चूंकि इतना लगता ही नहीं ये बुरा लफ्ज है, वो कहती है सो के को अच्छा ही लफ्ज बोला होगा, इंग्लिश का लफ्ज है। यकीन करें, ये जरूरत नहीं देनी चाहिए, माई मॉम इज सो मीन। ये बच्चे लफ्ज बोले तो ये खतरा, ये बदबख्त बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चा तो माँ बाप को क्या कर सकता है कि वला तकुल लहुमा उफ, उफ भी नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी दुनिया के लीडर बन जाएं, माँ बाप के लिए आप बच्चे ही हैं। तो लिहाजा ये उनकी अपनी आदतें बता रही हैं कि वो कैसे थे। सच्ची बात तो ये कि हमारे अब्बा जान तो बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना। प्लान क्या किया? यूसुफ को कत्ल कर दो। क्यों? ताकि फिर बाप हमसे ज्यादा प्यार करे। बाप की मोहब्बत उससे दूर करो ताकि वो हमसे प्यार करे। आज भी बहुत सारे लोगों को यही गलत फहमी है, और कई लड़कियां शादी के बाद ससुराल में जाकर यही जुल्म करती हैं, शौहर की मोहब्बत लेने के लिए उसको उसके घर वालों के खिलाफ करना चाहती हैं, और वो सोचती हैं सास को बुरा बना दो, नंद की बुराइयां करो, तो मेरा शौहर ना माँ को मिले ना बहन को मिले, वो बस सारा मेरा ख्याल रखे। तो याद रखिए, नफरतें देके कभी मोहब्बत नहीं मिलती। दूसरी बात, आप देखिए इस जुमले को हाईलाइट करके 3 सेकंड तक इस पे गौर करते हैं, और वो क्या कि इतना बड़ा जुर्म के भाई को कत्ल करें तो इसका बोझ दिल पे पड़ेगा, तो क्या बड़ी बात है। वतकून मिन बादिही कौमन सालेहीन, क्या फर्क पड़ता है, भाई को कत्ल करो, बाद में जाके नेक बन जाना, हज कराना, उमरा कर लेना, तौबा कर लेना। आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है, बड़े बड़े गुनाह करने के बाद क्या सोचते हैं, चलो बाद में नेक बन जाएंगे। कई लोग हैं, कुछ नहीं होता, अब रमजान आने वाला, एक ही बार नमाजें शुरू करेंगे। अब रमजान में बहुत पढ़ ली, देखिएगा जैसे चांद डूबता है, इस तरह रमजान के बाद लोग भी डूब जाते हैं, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, नमाजी कम हो जाते हैं। तो मुस्तकबिल में नेक बनने की नीयत से आज गुनाह करना, यह भी एक शैतानियत की बात है। फिर इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे एक अंधे कुएं में डाल दो, ताकि कोई आता जाता काफला इसको निकाल ले। क्या पता चला कि जहां बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हों, वहां अल्लाह ज्यादा बुरों में कुछ कम बुरे को पेश कर देता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि प्लान्स क्या किए हजरत यूसुफ के कत्ल के, और बात क्या कर रहे हैं आप जरा सुनिएगा, बाप के सामने आ रहे हैं कि क्या डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उनकी, कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे।